आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
इक्कीस फरवरी है आज, दिन मंगल का, और दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम नितिन ठाकुर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस के रिएक्शन का इंतजार था और रिएक्शन आ गया। राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये बताएं। यूरोप की राजनीतिक गर्मी के बाद बात भारत में अचानक बढ़ गई गर्मी की होगी, क्योंकि फरवरी में दिल्ली की गर्मी 35 डिग्री जा पहुंची है। तेजी से बढ़े तापमान के पीछे क्या कारण है और इसका असर फसलों पर कैसे पड़ने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे समझेंगे। और फिर जानेंगे कि हरियाणा के मानेसर में हो क्या रहा है, वहाँ क्यों हिंदू पंचायत बैठी।
अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले, आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी।
महापंचायत में पुलिस को खुलेआम धमकी दी गई कि वो हरियाणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को पकड़ने आई तो अपने पांव पर वापस नहीं जा पाएगी। इसका ताजा अपडेट लेंगे और फिर बात होगी दिल्ली में बैन हुई बाइक टैक्सी की, क्यों सरकार दिल्ली में ओला उबर रैपिडो की बाइक्स चलने नहीं देना चाहती। और आखिर में आपको सुनाएंगे आज का भौचक, लेकिन पहले सुनते हैं कुमार केशव से 60 सेकंड्स हेडलाइंस।
शुक्रिया नितिन। जांच एजेंसियों का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन, सीबीआई, एनआईए, आईटी और ईडी ने कई जगहों पर एक साथ की छापेमारी। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने शुरू की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल बैठक। यूपी पर्यटन विभाग के उपनिदेशक ने की आत्महत्या, घर की दूसरी मंजिल से कूद कर दी जान। पटना में पार्किंग विवाद के बाद हुई हिंसा में 7 आरोपी गिरफ्तार। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मान सम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश 1984 में भी बहुत कुछ हुआ था। कर्नाटक में पर्सनल फोटो शेयर करने पर आईएएस आईपीएस अधिकारी में सोशल मीडिया पर नोकझोंक, सरकार ने दोनों को पोस्टिंग के बिना किया ट्रांसफर। आरजेडी विधायक विजय मंडल का बड़ा दावा, होली के बाद तेजस्वी बनेंगे सीएम। जेडीयू प्रेसिडेंट बोले 2025 में होगा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भिवानी हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिले, न्याय मिलने का दिया आश्वासन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पुतिन का पलटवार, बोले यूक्रेन में पश्चिम ने सीरिया इराक जैसा खेल खेला। और मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज, अभिनेत्री सपना गिल ने लगाया छेड़खानी का आरोप।
यह दिनभर मैं हूं नितिन ठाकुर। शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करते हैं, जिन्होंने आज रूस की संसद को संबोधित किया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस संबोधन के खास मायने हैं, क्योंकि ये अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के ठीक एक दिन बाद आया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध की बात करते हुए वेस्ट पर कई आरोप लगाए, कहा कि डोनबास इलाके में शांति स्थापित करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की जो 2014 के बाद से ही सेंसिटिव बना हुआ था, लेकिन हमारी पीठ पीछे अलग साजिश रची जा रही थी। उन्होंने यूक्रेन और डोनबास को झूठ के सिंबल तक कहा। अपने भाषण में पुतिन काफी अग्रेसिव नजर आए। हालांकि 70 साल के रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बीमारी के बारे में कई बातें हैं जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में की गई हैं, और उनमें दावा है कि उनके भाषण को छोटा किया गया क्योंकि बार बार खांसी, चक्कर आना, नींद की गड़बड़ी और पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे पुतिन के लिए लंबे भाषण पढ़ना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मगर इसके बावजूद वो सख्त तेवरों में नजर आए और कहा कि हम पश्चिम के साथ बातचीत के लिए तैयार थे और हम चाहते थे कि समान सुरक्षा व्यवस्था बने, लेकिन इसके बदले हमें भ्रामक जवाब दिए गए। उन्होंने यूएसए पर नेटो का विस्तार करने, पूरी दुनिया में अपने सैन्य अड्डे बनाने का आरोप भी लगाया, और उनके मुताबिक यूक्रेन के लोग अपने पश्चिमी आकाओं के बंधक बन गए हैं। पुतिन बोले कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सियासत, इकोनॉमी और सेना पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में और कौन सी जरूरी बातें कहीं और वो पॉइंट्स रशिया अमेरिका टसल में कितने अहम है, ये जानने के लिए हमने बात की जेएनयू में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से।
देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि युद्ध उन्होंने नहीं, यानी रूस ने नहीं शुरू किया है, वेस्ट ने या अमेरिका ने शुरू किया है। ये जो सबसे पहली बात शुरुआत ही उन्होंने की। उन्होंने जो आगे बात कहा वो कहा कि डोनबास के लोगों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, डोनबास के लोग बहुत सफर कर रहे हैं, ये चीजें हैं। अगर उनमें देखा जाए पुतिन ने क्या नया कहा है, तो वो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पुतिन ने, या एक जो मेन स्ट्रीम रशियन मीडिया है वो कह रहा था कि ये राइट विंग फोर्सेज हैं या नाजी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि पूरे तरह से कंट्रोल कर लें यूक्रेन पे, और हम वो नाजी फोर्सेस को डिफीट करने जा रहे हैं, ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। उस चीज को पूरी तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया है। दूसरी बात जो उन्होंने जो कही है, और उनका ऑब्जेक्टिव वॉर करने का जब शुरुआत हुई थी तो रशियन जनता को उन्होंने ये कहा था कि हम वहां के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं उनको हम खत्म करेंगे। दूसरी बात जो उभर के आई है कि इस स्पीच में उन्होंने बिल्कुल ये इंगित किया है कि देखिए अब हम वेस्ट के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका हमारे सामने खड़ा है, और खासकर प्रेसिडेंट बाइडेन के विजिट के बाद ये स्पष्ट कराना चाह रहे थे कि अब जो है अब वेस्ट के सामने रूस खड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो मतलब भावनात्मक तौर पे वो जनता से अपने आप को जोड़ रहे हैं यूक्रेन वॉर में, लेकिन जो गोल पोस्ट था उनका एक साल पहले और जो गोल पोस्ट अब है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर गया, यानी वो मिसलीड कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए अपनी ही जनता को अपने स्टेटमेंट्स द्वारा।
अच्छा अमिताभ जी, फिलहाल तो यूक्रेन में रशियन फोर्सेस की हालत कैसी है ये थोड़ा बताइए, क्योंकि वेस्टर्न हेल्प के जरिए यूक्रेन जो है रूस को एक के बाद एक सेटबैक दे रहा था, और ये भी बताएं कि रशिया के लिए आगे ये युद्ध कितना चैलेंजिंग रहने वाला है।
आगे जो युद्ध अगले हम 1.5-2-3 महीने में देखेंगे, जो स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से जाना जा रहा है, वो मुझे लगता है थोड़ा भीषण होगा। भीषण इस सेंस में होगा कि काफी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन यूक्रेन में रूस ने कर रखा है, करीब 3 लाख रेगुलर उनके सैनिक वो उस डॉनबास रीजन में है या जो भी उन्होंने कैप्चर किया उस रीजन में। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगेगी, जैसे जैसे ठंड कम होगी और गर्मी स्प्रिंग आएगा, तो वो जो इंटेंसिटी है वॉर का, जो युद्ध की का जो इंटेंसिटी है वो और तीव्र होगा। उस तीव्र होने के दरमियान ये भी हो सकता है, और जिसका अंदेशा सब लोग लगा रहे हैं, कि अपनी जितनी ताकत है न्यूक्लियर वेपन छोड़ के वो सारा इस्तेमाल करें, यानी फाइटर जेट्स जिनका अब तक इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, और पिछले अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से अब तक फरवरी में करीब 5-5.5 महीनों में इन्होंने जो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी जो करीब 3 लाख लोगों को तैयार किया था वो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो गई है। उसके अलावा 1.5 लाख आर्मी इन्होंने उस रूस के अंदर यानी यूक्रेन से इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे रखा हुआ है कि जरूरत पड़े तो इनको भी आगे भेजा जाएगा, यानी वो पूरी तरह से एक ब्लिट्सक्रीग करना चाहते हैं जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने पोलैंड के अगेंस्ट किया था, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह फोर्स से और आउटनंबर कर दें यूक्रेन की सैनिकों का। तो ये अगला उनका चरण जो देखने में या जो प्रतीत हो रहा है ऐसा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी का अलाव अभी ठीक से बुझा नहीं कि गर्मी अपने लाव लश्कर के साथ आ धमकी है, और फरवरी महीने में ही अप्रैल मई की याद दिला रही है। दिल्ली के लिए तो ये तीसरी सबसे गर्म फरवरी है। कल मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री के पार पहुंच गया, जो सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली के ही पीतमपुरा में पारा जो है वो 35.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले 2006 की फरवरी में इससे ज्यादा गर्मी पड़ी थी, और सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज हो रहा है। उधर राजस्थान का हनुमानगढ़ भी है, वहां भी फॉगी चल रहा है। आज सुबह वहां 0 विजिबिलिटी की खबरें आईं। इस बदलते मौसम की वजह से सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों को जुकाम हो गया है, कितने सारे लोग खांस रहे हैं। तो मौसम के मूड में इतने तेजी से बदलाव क्यों आया और इसके पीछे वजह क्या है, ये हमने पूछा दिल्ली में हमारे सीनियर रिपोर्टर जो मौसम की खबरों को कवर करते हैं, कुमार कुणाल से।
देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आमतौर पर फरवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक के बाद एक लगातार इस समय एक्टिव रहते हैं। इस बार हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहे तो हैं, लेकिन बहुत कमजोर ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं जो एक्टिव रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से दो मुख्य भौगोलिक क्रियाएं होती हैं। एक तो कि बारिश होती है, इस बार बारिश भी कम हुई है क्योंकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उनका असर मैदानी इलाकों तक भी नहीं आ पाया है। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो चक्रवातीय हवा होती है, उसके विपरीत दिशा में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। उसकी वजह से जो रेगिस्तानी इलाके हैं राजस्थान के या यहाँ तक कि पाकिस्तान के, वहां से गर्म हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आ रही हैं, और यही वजह है कि तापमान जो है वो सामान्य से 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक कई इलाकों में बढ़ गया है। दिल्ली में तो लगभग 9 डिग्री सामान्य से ज्यादा है तापमान, लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पर पर्वतीय इलाके हैं, वहां भी तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये आम तौर पर नहीं होता है और शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है इस तरीके से। और हालांकि अभी फिर से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है जिसकी वजह से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर में कमी आएगी, लेकिन वो भी कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस है तो उसे भी बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन 2-3 डिग्री कम होगा तापमान, फिर भी सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री ऊपर तापमान लगातार बना हुआ रहेगा।
अच्छा, गर्मी को लेकर क्या फॉरकास्ट है? क्या मार्च में ही हीट वेव्स शुरू हो जाएंगे ऐसा लगता है?
देखिए, हीट वेव तब माना जाता है जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए मैदानी इलाकों में और जो सामान्य है उससे 5 डिग्री ऊपर रहे तापमान और 40 डिग्री को क्रॉस कर जाए। जिस तरीके से तापमान अभी दिल्ली में 33 डिग्री को पार कर चुका है तो निश्चित तौर पर मार्च के महीने में 40 डिग्री को पार करने की संभावना है। और अगर 40 डिग्री पार कर जाता है और सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहता है, सामान्य से 9 डिग्री ऊपर था आजकल में, तो उसमें जब सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चला जाएगा तो निश्चित तौर पर मार्च में आपको उम्मीद की जा सकती है हीट वेव, यानी जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में लू कहते हैं। तो मार्च से ही लू चलने लगे। और इस बार एक और जो बड़ी आशंका है वो ये है कि मार्च में तो हीट वेव एंट्री होगा ही, लेकिन उसके बाद भी बहुत आसार नहीं है राहत के, क्योंकि जो प्री मॉनसून बारिश होती है या प्री मॉनसून जो मौसम की स्थितियां होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई पड़ रही, यानी बहुत ज्यादा बारिश मॉनसून से पहले वाले इलाके में, यानी 29 जून को दिल्ली में मॉनसून आता है, मई में 15 मई के बाद केरल से शुरू होता है, तो मार्च अप्रैल मई जून ये 3-4 महीने ये जो है ये भयंकर गर्मी वाले हैं। अगर मार्च में लू की जैसी स्थिति बनती है और उसके बाद जून तक कंटिन्यू रहती है तो एक बहुत लंबा स्पेल होगा। ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि क्या इस बार सिर्फ गर्मी ज्यादा नहीं बल्कि लंबी भी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी आशंका है जो कि मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं इस बार।
शुक्रिया कुणाल। मौसम में बदलाव का असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, हमारा शरीर जिससे चलता है उस पर भी पड़ता है। मेरा मतलब अनाज पैदा करने वाली फसलों पर भी उसका उतना ही इम्पैक्ट होता है। तो अचानक गर्मी बढ़ जाने से कौन सी फसलें और उनकी पैदावार प्रभावित होने वाली है, ये हमने पूछा पंजाब में हमारे रिपोर्टर मंजीत सहगल से।
ये जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मुसीबत बनकर आई है। सर्दियों के मौसम में, खासकर फरवरी के मौसम में, जब गेहूं की फसल में दाने बन रहे होते हैं उसमें अचानक उस वक्त तापमान में बढ़ोतरी दाने के आकार को प्रभावित कर सकता है। तापमान लगातार बढ़ता रहे तो दाने का आकार छोटा हो सकता है। दाने का आकार छोटा होने का मतलब है कि उत्पादन गिरना प्रति हेक्टेयर। वही लगातार तापमान बढ़ने को वैज्ञानिकों की भाषा में टर्मिनल हीट कहा जाता है और टर्मिनल हीट गेहूं की फसल के लिए काफी नुकसानदायक होता है। आपने बात की कि कितनी फीसदी फसल तबाह हो सकती है या उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कृषि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जिन किसानों ने नवंबर के पहले हफ्ते में फसल की बुआई कर दी थी उनको टर्मिनल हीट यानी कि लगातार बढ़ रहा तापमान प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो फसल देरी से बोई गई यानी कि लेट मेच्योरिंग जो वैरायटीज लगाई गई हैं उनमें लगभग 10 से 15% तक नुकसान हो सकता है। हालांकि नुकसान एक सिर्फ अनुमानित है, मौसम अगर लगातार इसी तरह से बढ़ रहा है तो ये नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तापमान स्थिर हो गया या गिर गया तो ये नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है। गेहूं एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और यही हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो पंजाब के कई किसानों से बातचीत की और गेहूं के अलावा कई ऐसी दूसरी फसलें हैं जो अब की बार तापमान बढ़ने से प्रभावित हुई है। आप प्याज की फसल ले लीजिए, मटर की फसल ले लीजिए और गोभी की फसल ले लीजिए, या फिर जो देरी से बोई गई सरसों है वो ले लीजिए, इनकी उपज भी प्रभावित हुई है। सब्जियां जहां 15 दिन पहले ही तैयार हो गई, इससे भाव गिर गए और किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, वहीं जो फूलगोभी की फसल है या फिर मस्टर्ड की फसल है उसमें तेलिया नामक बीमारी का संक्रमण हो गया है। दूसरी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि अब की बार गेहूं का उत्पादन कम भी हो सकता है। उत्पादन कम होने के साथ साथ ज्यादा गर्मी होने की वजह से फसल जल्दी पककर तैयार हो सकती है, और अगर फसल जल्दी पक जाती है तो अब की बार गेहूं की जो आवक है वो मंडियों में समय से पहले आ सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी। पिछले दिनों हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बुलेरो में दो नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया था। 16 फरवरी की घटना है और मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे और मृतकों के परिजनों ने 14 तारीख को नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को भरतपुर से अगवा किया है और इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गोरक्षा दल के मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया था। फिर पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मोनू मानेसर खुद को निर्दोष बता रहा है और मानेसर में आज मोनू और उसकी टीम के समर्थन में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में मोनू मानेसर को हिंदू गौरव बताया गया और पुलिस को धमकी भी दी गई। आज तक रेडियो रिपोर्टर राहुल गौतम इस महापंचायत को कवर कर रहे थे। उनसे हमने पूछा कि इस महापंचायत के आयोजक कौन थे और इसमें आज क्या हुआ और आसपास के इलाकों में फिलहाल इस घटना को लेकर कैसा माहौल है।
देखिए, इस महापंचायत का जो कॉल दिया गया था वो दरअसल किसी बैनर के तले नहीं दिया गया था। दरअसल ये जो लोकल्स लोग हैं, जो मानेसर के ही रहने वाले हैं, आसपास के गांवों के रहने वाले, उन्हीं लोगों ने ये बुलाई थी पंचायत। उसका नाम दिया गया था हिंदू महापंचायत। तो जो लोग माइक पर बात कर रहे थे, अलग अलग लोगों को माइक दिया जा रहा था बात करने के लिए, तो वहां पर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जिसकी सरकार है राजस्थान के अंदर, उसको लेकर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया जो भी किसी भी सम्मानित मन से नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं आपको खुले तौर बता सकता हूं कि जो लोकसभा के सांसद हैं हैदराबाद से, ओवैसी साहब, उनको लेकर अपशब्द बोले गए। इसके अलावा इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की गई, ये भी कहा गया कि आप बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान पुलिस को धमकी दी गई खुले तौर पर कि अगर राजस्थान पुलिस यहां पर दबिश डालने के लिए आती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ है ये दरअसल रजिस्टर हुआ है राजस्थान के अंदर, तो उसको लेकर, क्योंकि दोनों राज्यों में जांच चल रही है, हरियाणा में भी और राजस्थान के अंदर भी, तो राजस्थान पुलिस जब जांच के लिए यहां पहुंची तो ये कहा गया कि अगर गांवों में दबिश के लिए आएगी राजस्थान पुलिस तो वो आएगी तो अपने पांवों पर, लेकिन अपने पांवों पर वापस जा नहीं पाएगी। तो इस तरीके का माहौल था वहां पर, आप कह सकते हैं एक अनईजी काम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तनाव था। जब महापंचायत चल रही थी तभी खबर आई कि मोनू के घर पुलिस पहुंच गई है और एकाएक पूरी महापंचायत में जो लोग शामिल थे वो बाहर आते हैं, सड़क को जाम कर देते हैं, नारेबाजी होने लग जाती है, माहौल एकदम गर्मा जाता है। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर उस जैम को खुलवाया, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा माहौल है मानेसर या मानेसर के आसपास के जो गांव है वहां पर, मुझे कम से कम ऐसा लगा कि जो लोग हैं वो ये तय कर चुके हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं मोनू मानेसर का, कि मोनू मानेसर बिल्कुल और उसके जो साथी हैं वो बिल्कुल बेगुनाह है और पुलिस उनको जबरदस्ती इस केस में फंसा रही है। मुख्य तौर पर 4 मांगे उन्होंने रखी है, एक मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया आला अफसरान जो मौजूद थे पुलिस को, उसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, मोनू मानेसर हैं और जो बाकी के जो आरोपी हैं उनके परिवारों को सुरक्षा मिले। सोचिए आप, ये भी कहा गया गांव के अंदर पुलिस बिना परमिशन के एंटर नहीं करेगी। तो इस तरीके की वहां पर ग्राउंड पे हालात बने हुए हैं।
राहुल, पुलिस को खुले मंच से धमकी दी गई, पुलिस का कोई रिएक्शन है?
जब ये महापंचायत शुरू हुई तकरीबन 11 बजे का टाइम था, लेकिन ये शुरू हुई 12 बजे के आसपास, तब वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, कोई लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उसको हम रिपोर्ट करने लगे उसके बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे। वहां पर मैं जब मौजूद था तो लोकल SHO को ऐसे कह सकता हूं कि तलब किया गया कि महापंचायत के सामने आप आइए। उनको बताया गया, साफ तौर पर कहा गया कि भाई राजस्थान पुलिस को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो आपके बिना गांव में कैसे आ सकती है, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना दबिश चल रही है। यहां तक कि एक व्यक्ति ने जो वहां मौजूद थे, उन्होंने जो कि हिंदू एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये तक कहा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनका इलाज अपने आप कर लेंगे। बाद में जब वहां पर ACP पहुंचे हरिंदर कुमार, और मैंने उनसे खुद सवाल पूछा कि गांव वाले ये बोल रहे हैं कि आप गांवों के अंदर एंटर नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो उस पर उन्होंने मेरे को कहा कि पुलिस जो है वो गांवों में अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जाएगी, बेझिझक जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि आप इन्फॉर्म करके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो हम देखेंगे, लेकिन अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हमें गांवों में जाना है तो हम गांवों में बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप हथियारों के जो लाइसेंस कैंसिल करने की जो प्रक्रिया चल रही है मोनू मानेसर की और बाकी लोगों की, वो कहां तक पहुंची? उसके बारे में उन्होंने मेरे को कहा कि वो भी अभी चल रही है, सब कुछ अभी अंडर प्रोसेस है और जल्द ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर पुलिस, अगर मैं ये कहूं कि वो समझ रही है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी टेंस है, इसलिए वो भी बचाव की मुद्रा में है, वो नहीं चाहते कि माहौल और गर्म हो। अभी शायद आपको जानकारी होगी, ये गांव वालों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो एक आरोपी है इस पूरे मामले के अंदर, श्रीकांत नाम है उनका, उनके उनके घर पर पुलिस पहुंचती है और उनके उनकी जो वाइफ है श्रीकांत की, उनके साथ में जबरदस्ती होती है, धक्का मुक्की होती है या बदतमीजी होती है, जिसकी वजह से उनका गर्भ गिर गया। अब इसको लेकर अब बाकायदा FIR दर्ज हो गई है कई पुलिस वालों के खिलाफ। राजस्थान की जो पुलिस के जो अधिकारी पहुंचे थे, कई उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है। तो इस तरीके का माहौल है वहां पर।
अच्छा, इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची राहुल?
देखिए, पहले इसमें कहा जा रहा था कि 5 एक्यूज हैं। अब राजस्थान पुलिस ने कहा है इसमें 3 लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर 8 एक्यूज अब हो गए हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी जो मोनू मानेसर है, जो इस पूरे मामले के अंदर बताया जा रहा है कि सबसे मुख्य आरोपी है, वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है। उन्होंने आज तक से बात की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा, अपना पक्ष रखा था कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं वहां मौजूद नहीं था मौका वारदात पर, जिसको मैं प्रूव कर सकता हूं। हालांकि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वो पूरी तरीके से पाक साफ हैं तो वो अपने आपको सरेंडर क्यों नहीं करते और जो भी साक्ष्य उनके पास हैं वो कोर्ट के सामने रखें ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए। पुलिस अभी जो आर्म्स लाइसेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप मोनू मानेसर का जो यूट्यूब पेज है या जो फेसबुक पेज है उस पर अगर आप जाएं तो वो कई हथियार में दिखाते हैं, उनके पास असला है, उन सभी हथियारों के जो लाइसेंसेस हैं उसको कैंसिल करने की प्रक्रिया चल रही है। फोरेंसिक जो एविडेंसेस हैं उनको जुटाया जा रहा है कि किसी प्रकार से फोरेंसिक तौर पर इसको एस्टैब्लिश किया जाए कि आखिर इनके पीछे कौन इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात अब निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या किसी लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या कहीं वो इन लोगों के साथ पहले मिला हुआ था जिसकी वजह से इनको इतना एनकरेजमेंट मिला कि यहां तक पहुंच गए। हालांकि ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन तमाम एंगल्स पर जांच जो है वो जारी है।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम। अब जल्द ही दिल्ली की सड़कों से बाइक टैक्सी नदारद होने वाली है। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, जो ऐप बेस्ड कंपनियां ये सेवा देती थीं, अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। नियम ये कहता है कि कोई भी निजी वाहन का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिल्ली के ऑटो चालकों के संघ ने इसकी शिकायत की थी। उससे पहले भी परिवहन मंत्रालय ने इन कंपनियों को चेताया था, कहा था कि अपनी सेवा को बंद कर दें। नियम तोड़ने वाले बाइक राइडर्स के ऊपर पहली बार तो 5,000 का चालान होगा, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना होगा और फिर 1 साल की सजा भी मिलती है और बाइक भी जब्त हो सकती है। कंपनी के ऊपर 1,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा यदि अब भी जो बैन है उसे नहीं माना गया। नियम से अलग ये भी देखना होगा कि इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था और कईयों के लिए सस्ती सवारी भी थी। इस पर बात करेंगे इंडिया टुडे के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राम किंकर सिंह से।
देखिए, सबसे खास बात यही है कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी है, यानी किसी भी दोपहिया वाहन का कॉमर्शियल या व्यावसायिक इस्तेमाल वो राजधानी दिल्ली में नहीं हो सकता और ये कहा जाता है कि मोटर जो अधिनियम है उसका उल्लंघन है। उल्लंघन इस तरह से है कि इनका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप प्राइवेट वाहन जो है, यानी दोपहिया वाहन चला सकते हैं, लेकिन ऐसा चल रहा था पिछले कई सालों से और इसकी शिकायत जो है ऑटो यूनियंस ने की और यूनियन ने शिकायत में सरकार से ये कहा है कि कई दोपहिया वाहन ऐसे हैं जिनका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था जो कि दिल्ली में नहीं हो सकता और सब कुछ कर रही थी कुछ कंपनियां, तो एक ग्रे एरिया था, यानी जिसका फायदा कंपनियां लगातार उठा रही थी। यानी उन्होंने ऐप बेस्ड सर्विस बना लिया और बाइक भी लॉन्च कर ली, लेकिन इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था जिससे ऑटो यूनियंस को बहुत घाटा हो रहा था। फिर क्या था, उन्होंने शिकायत की और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। तो कोई भी दोपहिया वाहन यानी जो ऐप से चलता है, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, वह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस इन दिल्ली।
राम, फिलहाल इस मामले में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्या बाइक टैक्सी पूरी तरह बैन हो गई है या सिर्फ सफेद प्लेट के साथ कमर्शियल तौर पर बाइक के इस्तेमाल करने वालों के ऊपर एक्शन होगा?
देखिए, अभी तक कंपनियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि इस पूरे मसले में उनको उनका क्या होगा, क्या उनको रोजगार दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए होगी। लेकिन इतना जरूर है कि तकरीबन 5,000 से 7,000 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सीधा सीधा सा प्रभाव पड़ा है कि पहले वह आते थे, काम करते थे और कुछ कमाई होती थी तो उनका घर चलता था। लेकिन जो उनका तरीका था वो ऐसा था कि उसमें कुछ प्रतिशत वो कंपनी को देते थे, बाकी अपने पास वो रखते थे। तो जाहिर तौर पर ये घाटा हुआ है दोनों को, लेकिन चूंकि मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन है और इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, लेकिन वो महाराष्ट्र के केस में आया है, वहां भी इस तरह की चीजें थी कि जो बाइक का कॉमर्शियल इस्तेमाल था वो बंद कर दिया गया। तो इस वजह से भी ये जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये दोनों मसले खास तौर पर अलग हैं, लेकिन साफ है कि दिल्ली में खासकर वो लोग जो अब टैक्सी बाइक का इस्तेमाल करते थे उनको मुसीबत झेलनी पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया राम। और बारी अब भौचक की, लेकर आ गए हैं मेरे दोस्त अंकित।
एक पढ़े लिखे इंसान से ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी हिंसा ही नहीं मामूली सी छींटाकशी जैसे हालात से भी दूरी बनाए रखे। महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर वाले दफ्तरों की सबसे ऊंची और बढ़िया चक्के वाली कुर्सियों पर विराजमान होते हैं अधिकारी, वो करोड़ों में से कुछ मुट्ठी भर लोग जो देश के सबसे दुर्गम और सपने जैसे एग्जाम को पास कर IAS और IPS बनते हैं और साथ ही वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल। इन्हें देखकर एक मिडिल क्लास घर में माँ बाप अपने बच्चों को ये बतलाते हैं कि देखो, इनके काम को देखो और इनसे कुछ सीखो। पर यदि कर्नाटक की इन दो अधिकारियों से कोई सीख जाए तो सोशल मीडिया पे एक दूसरे पर ही कीचड़ और कालिक पोतने लग जाएगा। सोशल मीडिया पर IAS और IPS की लड़ाई अब जा पहुंची है सचिवालय। जी हाँ, IPS रूपा मुदगिल और IAS रोहिणी सिंधूरी की आरोप प्रत्यारोप वाली लड़ाई, जिसमें अश्लील तस्वीर की पोस्टिंग हो, भ्रष्टाचार जैसी बातें हो या फिर किसी हत्या का मामला हो, ये सोशल मीडिया पर लगातार डाला जा रहा था। तो ट्रोलर्स को मौका मिल गया और वो बवरा गए। एक मयान में दो तलवार और सोशल मीडिया पर लड़कियों की आपस वाली मारपीट की वीडियोस को उछालने लगे। अब उछाल आया तो सचिवालय की सबसे ऊंची मंजिल पर सूबे के गृह मंत्री के दफ्तर जा पहुंचा। मामले को संज्ञान में लिया गया है और कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा जननेन्द्र ने कड़ा रुख अपनाकर बयान देते हुए इसे शर्मनाक बताया है और इन दोनों महिला अधिकारियों को तलब करते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कह दी है। ये तो रोज की बात है और बड़ी आम बात है कि सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बदनाम करने और लड़ने में मर्यादाओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे पर वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर जब आप आम नहीं खास होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मंत्र सुबह शाम पढ़ना पड़ता है, वरना हर थाल में रोस्ट, कीचड़ और कालिख आपके दफ्तर से लेकर आंगन तक सजा के रख दी जाती है।
और इसी के साथ आज के दिन भर पर विराम लगाते हैं। हमारा स्पेशल शो आता है आज मंगलवार को हेलो डॉक्टर। इस बार के एपिसोड में हमने बदलते मौसम को ध्यान में रखकर सर्दी जुखाम से जुड़ी बातें डॉक्टर से की हैं। इसे जरूर सुनें और बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुंदन ने और साउंड मिक्सिंग किया है सचिन ने। मैं हूँ नितिन ठाकुर, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।